नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। तमिलनाडु के करूर में कल एक रैली में मची भगदड़ में मृतकों की संख्या 39 हो गई है। 50 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 23 से अधिक घायल आईसीयू में भर्ती हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जिन लोगों का आईसीयू में इलाज हो रहा है उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में आयोग गठित किया है। केंद्र ने इस घटना के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। ये रैली फिल्म अभिनेता और राजनेता विजय की तमिलनागा वैत्री कड़गम पार्टी ने आयोजित की थी। श्री विजय ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसमें मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत के पास एक ऐसा पड़ोसी देश है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है और भारत ने आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उसके नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने इस साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया, जिसमें निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का फिर समर्थन व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना पर सवाल उठाए हैं। परिषद ने इसको लेकर हिंसक घटनाएं रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से कड़ी निगरानी रखने का आग्रह किया है। विश्व हिंदू परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय से भी इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। कोलंबो में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर सातवीं बार खिताब जीत लिया है। भारत हाफ टाइम तक 2-1 से आगे था, लेकिन बांग्लादेश ने आखिरी मिनट में गोल करते हुए स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारत के शैलेश कुमार ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की आज 118वीं जयंती है। इस अवसर पर उनको पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में आज से दुर्गा पूजा उत्सव शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ढाक बाजा काशर बाजा उल्लू दे अर शाख बाजा बछर परे आवारे लो माजे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।